अब हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रद्दे अमल की आखिरी लहर। 609। कोई इनकलाब सारे मराहिल ये कशमकश को पार करके और पुरानी क़यादतों का ज़ोर तोड़कर जब फ़ैसला कुन कामयाबी के दौर में दाखिल होता है, तो इस कामयाबी पर मारे हसद के बाज़ दू हिम्मत लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। फिर कोई मौका आता है जब ये आखिरी जसारत से काम लेकर सैलाब तगैर, क्या मतलब, तब्दीली का सैलाब यानी जो चेंज आ रही होती है सोसाइटी में, सैलाब तगैर के आगे तिनकों से बंद बांधने की कोशिश करते हैं, नहीं फ़ायदा होगा। ऐसी ही सूरत इस्लामी इनकलाब को पेश आई। कुरैश और यहूद और सहराई कबाइल की मुकामी क़यादतों का ज़ोर जब टूट गया, अवाम इस्लाम की तरफ बढ़ने लगे और इस्लाम अवाम में नफूज करने लगा। मुखालफत की एक आखिरी रद्द आमली लहर बिल्कुल एक नई सूरत में उठी। कुछ लोगों ने यूं सोचा कि एक शख्स उठा और इसने नबूवत का दावा किया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया, कशमकश की, आज वो सारे अरब का हुक्मरान बन बैठा है, तो क्यों ना हम भी यही सिक्का चला देखें। देखिए, लोगों को फ़र्क ही नहीं पता लगा कि नबी सल्लम का मकसद क्या था। वो सोचते थे कि आप खुद बड़ा बनना चाहते हैं। खैर, खसूसन जब ये लोग सदका ज़कात के अम्बाले कसीर को मदीना जाते देखते होंगे तो इनके मुंहों में पानी भर भर का आता होगा। इनके सामने ऐसे अनासिर थे जो चाहते या ना चाहते हुए इस निज़ाम के मती हो गए थे, मगर इनके दिलों में मुखालिफाना लावा भी खोल रहा था। इनको समेट कर उन्होंने बाजी खेलना चाहिए। वो ये बात खूब समझते थे कि अब जाहली तसव्वुरात और मुशरिकाना या बुत परस्ताना नज़रियात के बल पर तो कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिज़ा में तौहीद बारी ताला और वही और नबूवत और आखरत के अकायद पूरी तरह से छा गए हैं। उन्होंने भी अपनी दुकानों में इन्हीं लेबलों के साथ सौदा रख कर लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मगर ये बेवकूफ़ न जानते थे कि सिक्का चलाने के लिए सिर्फ एक नकली नक्श काफ़ी नहीं होता, इसके लिए खरी धात भी चाहिए होती है। ये बहुत अहम है बात। लोग सोचते हैं कि ये काम बस हर एक कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे जो दूसरों की देखा देखी काम करते हैं और फिर नाकाम होते हैं, मगर ये बेवकूफ़ न जानते थे कि सिक्का चलाने के लिए सिर्फ एक नकली नक्श काफ़ी नहीं होता, इसके लिए खरी धात की भी ज़रूरत होती है। और इस्लाम के सिक्के में जो धात इस्तेमाल हुई थी वो फ़ी नफ्स ही भी बेहतरीन थी। खियारुकुम फिल इस्लामी खियारुकुम फिल जाहिलिया, यानी जो तुम्हारे लोग जाहिलियत में अच्छे थे ना, वो इस्लाम में आकर भी अच्छे रहे। और फिर इसे 10-20 बरस तक भट्टियों और खटालियों से गुजारा गया, मगर बंदगाने हविस की निगाहें कभी गहराई तक नहीं जाती। वह अपनी पसंद के मुफाद को देखती हैं और इस कीमत में जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इन पर कभी तवज्जो नहीं करती। गरज़ तारीख में ये जो होती आई है कि हर अजीम शख्सियत का मुंह चुड़ाने के लिए कुछ दूँ फितरत लोग नमूदार हो जाया करते हैं, और हर अरूज पजीर तहरीक के आसमान गिर इल्म के मुकाबले पर बासिफला अनासिर चीथड़ों की झंडियाँ बना के उठ खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तजुर्बा अरब में भी पेश आया। ऐसे शर पसंदों का मुख्तसर तस्करा किया जाना ज़रूरी है, यानी असल में झूठी नबूवत के दावेदार, ये टॉपिक है। उनको लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो आप तो सरदार बन गए, हुक्मरान बन गए। अच्छा, अब तो माल गनीमत जा रहा है, बकरियाँ जा रही हैं, खाने जा रहे, पीने जा रहे, हम भी लेते हैं। नीयत देखिए गलत है ना। सबसे पहले इसमें नाम आता है मुसलमा कसाब का। पीछे बात हो चुकी कि एक वफद के साथ मुसलमा बिन हबीब जो कज़ाब कहलाता है मदीना आया। मरकज़ इस्लाम की हमा हमी को देखकर इसकी हवस इक्तदार में उबाल आया होगा। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ख़त लिखा जिसमें वही शिरकत इक्तदार का मामला छेड़ा और धमकी भी दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इसे रद्द कर दिया। भुनाकर इसने नबूवत का आलम बुलंद किया। अदीब तो वो था ही, कुरान की आयात की तर्ज को सामने रख कर मुकफ़ा यानी काफिये रखे हुए हम वजन शेर मुकफ़ा इबारतें घड़ घड़ के सहराई अवाम को सुनाता। और चूंकि बाज़ लोग अभी तक जाहिलियत से जहनी वाबस्तगी रखते थे और इनकी तालीम व तरबियत इस्लामी निज़ाम के मुताबिक हो नहीं पाई थी, नीज इलाकाई और कबीलवी असबियत भी अभी बाकी थी, इसलिए इसे कुछ ना कुछ पैरोकार भी मिल गए। फिर चूंकि इसकी वही ने नमाज माफ कर दी और इसकी शरीयत ने जिना और जुए को जायज करार दे दिया, इसलिए तमाम का तमाम फासिक मिजाज उनसर इसके गिर्द जमा हो गया। याद रखिए, हर सोसाइटी में कुछ लोग फासिक मिजाज होते हैं। अब आप कहते हैं जी बेहयाई ना फैलाओ, और एक नबी बन के कहता है कोई हरज नहीं, जिना की इजाजत है, तो उसको तो वो शख्स अच्छा लगेगा ना। यहाँ से ये पता चलता है बातिल से बातिल अकायद वाला भी अपने गिर्द कुछ ना कुछ रौनक जमा कर लेता है। ख्याल कीजिए, ये ताकत थी जो इस्लामी तहरीक के मुकाबले में लाई जा रही थी। दौरे सिद्दीकी में इसका खात्मा हुआ। याद रखिए, वमा जो बेकार होता है ना, वो जुफा होता है। वो जो मिसाल है ना सूरत रात की के फयमकुस, वो चीज़ जो हक है वो बाकी रह जाती है। बातिल बहुत उठा, एकदम शोशा आएगा शहर में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, फिर एकदम गायब हो जाएगा। मुस्तकिल जम के काम करना सिर्फ हक की शान है। कई लोग लावालीपन में कुछ काम शुरू करते हैं, फिर ठंडे होके बैठ जाते हैं, कोई नाम ही नहीं उनका रहता। तो हमेशा हक का साथ दीजिए, हक के साथ रहिए, ताकि काम मुस्तकिल बुनियादों पर होता रहे। इसके बाद दूसरा दावा जिसने किया वो एक औरत थी। एक औरत मुसलमा के इलाके के पड़ोस में से उठी, जिसका नाम सुजा था। इसने भी जनाना नबूवत का अवलीन अलम बुलंद किया, यानी पहली दफ़ा इस औरत को ये जरूरत हुई कि एक औरत के नबी होने का दावा करें। मुसलमा ने इससे मुलाकात की और अफहाम व तफहीम के लिए तन्हाई में गुफ्तगू करार पाई। मुसलमा ने शैतानी वही कैसे फुहश पारे पेश किए कि सजा जिन्स की रो में बह गई, इसका वजूद मुसलमा में जम हो गया। बाद में मुसलमा कत्ल हुआ तो वो तायब होकर मरते दम तक इस्लाम पर कायम रही। निबास कहते हैं कि फिर इन्होंने शादी की, और फिर लेकिन बहरहाल इसका अंजाम अच्छा हुआ। क्या कुरान कहता है, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन और खबीसातु लिलखबीसीन। लाइक माइंडेड लोगों की आपस में दोस्ती हो ही जाती है। फिर तीसरा नाम आता है हज्जतुल विदा के बाद यमन के जरखेज़ और सियासी अहमियत रखने वाले इलाके में अस्वद अंसी का। अस्वद अंसी ने अदाए नबूवत के पैराए में अलमे बगावत बुलंद किया। इसका असल नाम जुल हेमार अब्दुल्ला बिन काब था। कबीला मजहज से इसे पैरोकार मिले, फॉलोअर्स, और नजरान में भी इसके असरात फैले। इसके असर की बड़ी वजह इसके जादू मंत्र वगैरह का चलन था। इस्लामी हुकूमत के बाद सिविल अफसरों और दावती और तालीमी कारकुनों को इसने तहतेक कर दिया और बास को अपने इलाके से निकाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के अफसरों को कुव्वत इकट्ठी करके इस बगावत के फ़रुख करने का फरमान भेजा। इसने किरानियों नस्ल मुसलमान को कत्ल करा के इसकी खूब रो बीवी को ज़बरदस्ती घर में डाल लिया था। ये खातून अपने ईमान में पुख्ता थी और इसी की इमदाद से इस्लामी हुकूमत अस्वद पर काबू पाने में कामयाब हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे आखरत से 2-1 रोज़ कबल ये फितना घर हलाक हुआ। फिर इसकी बंसरी फौज को बासानी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके फैलाए हुए फितने के असरात हज़र मौत से ताइफ तक फैले और इनका इजाला भी दौरे सिद्दीकी ही के आगाज़ में हुआ। आप नोट कर रहे हैं कि हर एक का अंजाम दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है, अस्हाब मौजूद हैं, इस्लाम के आज भी कितने दुश्मन हैं फिर भी इस्लाम मौजूद है, ये भी हक की एक दलील है। लेकिन ये झूठे बस वो एक गुबार की तरह उठे और ख़त्म हो गए। पांचवा नाम जो आता है वो है तलहा बिन खुवैलद असदी का। क्या हुआ, इसके मुंह में भी पानी भर आया। इसने भी जाली नबूवत के बल पर बाजी मार लेना चाही। अपने कबीले बनो गतफान में से इसे पैरोकार मिले। इसने भी नबी सल्लम को ख़त लिखकर इक्तदार में से हिस्सा मांगा था। इसके फितने का कला कमा भी दौरे सिद्दीकी में हुआ। फिर पांचवा नाम है अम्मान से एक शख्स था, लकीत बिन मालिक अजदी। इसको जब हौजा बिन अली की जानशीनी मिली तो इसके दिमाग में भी कीड़ा कलबलाने लगा। दरअसल ये मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ इलाकों में इसलिए उठे कि इनको अपने इर्द गिर्द जाहिलियत परस्तों, बतौर निफाक इस्लाम कबूल करने वालों, पुराने जराइम पेशा फासिकों, जिना शराब जुए और सूद खोरी के मतवालों, एक मरकजी निज़ाम की इताअत के मुकाबले में अपने कबीले की सर बुलंदी चाहने वालों, फिर ज़कात देते हुए और ज़कात के अम्वाल को मदीना जाते देखते हुए अंदर ही अंदर कुढ़ने वालों, नीज़ अपनी छोटी मोटी क़यादत के मातमियों की एक खासी तादाद दिखाई देती है। इस तादाद को ये लोग हरकत में ले आए और इनके तुफैल जाहिलियत की दम तोड़ती हुई कुव्वत ने एक आखिरी हरबा संभाला, लेकिन नबी सल्लम की तैयार करदा क़यादत ने हालात की खौफनाक नज़ाकत के बावजूद बड़े मजबूत हाथों से इन फितनों का सर कुचला और अरब के एक एक मुतनफ़िस को नज़म में कस दिया। क्या पता चला? कोई सहारा चाह रहे होते हैं ना बस। असल बात ही यही है कि लोग ये चाहते हैं कोई अपने कंधे पे तलवार रखकर हमें बचा दे। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना रहम फरमा दे। आगे का टॉपिक क्या है? तहरीके इस्लामी का इज्तमाए अजीम, ये कौन सा होता है? हज। हज इस्लाम की एक अजीम दर्जे की बुनियादी इबादत है। हरम पाक जो दावत इब्राहिमी का मरकज़ था और जिसके ज़र्रे ज़र्रे पर दीन की तारीख के कीमती नकूश सब्त हैं, जिसकी फ़िज़ा में इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआएं रची बसी हैं, फिर जिसके पूरे माहौल में ख़ुद मौसने इंसानियत के कारनामे हयात के अबवाब बिखरे हुए हैं, और वो हमेशा के लिए इस्लामी दावत और तहरीक का आलमी मरकज़ और किबला करार पाया, हर साहिब तौफीक मुसलमान के लिए उम्र भर में कम अज़ कम एक बार इस मरकज़ पर मुकर्रर अय्याम हज में हाज़िरी देना, शायर और मनासिक अदा करना, क़ुरबानी की सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करना, अम्बिया की तारीख़ के नकूश और बरकत से बहरा अंदोज़ होना, दुनिया भर से आने वाले नज़रिए हक़ के अलमबरदारों और इस्लामी निज़ाम अख़ुव्वत के रफ़का से राबता पैदा करना, और हर तरफ से मुंह मोड़ कर कामिल आजजी के साथ अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ियत हक का ये हुक्म 9 हिजरी में नाजिल हुआ। देखिए इतना कुछ जो हमने पढ़ा ये सब कुछ है हज में। हमारे यहाँ हज क्या है? दावत, फूलों के हार और क्या लेकर जाएंगे और तोहफे और ये वो। असल में हज में स्पिरिचुअलिटी की हर चीज़ मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर हज बनाकर 300 रफ़का के साथ मक्का रवाना फरमाया कि वो इनको अपनी इमारत में हज अदा कराएं। नोट करें, अल्लाह के नबी खुद नहीं गए, अबू बकर को आगे किया। बरसबीले तस्करे इस हज के बारे में चंद अहम बातें दर्ज की जाती हैं, क्योंकि दीनी और सियासी दोनों लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत तहरीक इस्लामी की तारीख में है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इमारत के साथ हज़रत अली को एक दूसरी जिम्मेदारी सौंपी कि वह सूरत तौबा की पहली 4 आयात हज के इज्तिमा में सुनाएं और हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक ज़रूरी ऐलानात नबी सल्लम तक पहुँचा दें। काबिल ऐलान उमूर ये थे कि एक तो साबिक जाहिलाना शिर्क पर कायम रहकर जिन लोगों ने नबी सल्लम या इस्लामी रियासत से मुआहदा करके मुफादात महफूज कर रखे थे, इनके सामने ऐलान कर दिया गया कि 4 माह की मोहलत है, इसके बाद तमाम ऐसे मुआहदात बाहुक्म खुदाबंदी कल अदम हो जाएंगे। कल अदम मीन ख़त्म हो जाएंगे। इस दौरान में वो अपने लिए राह अमल खुद तय कर लें कि क्या इनको इस रियासत की शहरियत तरक कर देनी है या जंग करनी है, यानी दोनों में से एक काम करना होगा, या फिर इस्लामी रियासत के अंदर बहसियत मुस्लिम के रहना है, यानी अब रियासत और रियासत का कोई मौका ना था, इस्लामी हुकूमत अपने हदूद में खुद मुख्तारी के जजीरे कायम रख कर अपने तकाजे पूरे नहीं कर सकती थी। ऐसे मुआहदात को ख़त्म करते हुए भी बरसरेआम ऐलान कराया जाना ज़रूर हुआ और फिर 4 महीने की काफ़ी मोहलत दूसरे फरीकों को दी गई। ये रियायत भी दी गई कि अगर कोई मुशरिक इस मुद्दत में मदीने आकर इस्लाम को समझना चाहे तो इसको बाहिफाजत आने जाने का मौका होगा। फिर मुशरिकीन में से भी इन लोगों को अलग रियायत दी गई जिन्होंने दयानतदारी से ईफाए अहद किया था। इनके मुआहदात को इनकी मुकर्ररा मुद्दतों तक के लिए बहाल रखा गया। असल ज़ाद इन मुशरिकीन पर थी जिन्होंने इस्लाम के मुखालिफ दुश्मनी और जंग के खौफनाक महाज बनाए, तसादम करते हुए सारी अखलाकी हदें तोड़ दी, फिर कौल इकरार से बार बार फिरे और हर किस्म के लिहाज और मुरव्वत को बालाए ताक रखते थे, यानी जब मौका आता था तो सब माहदे तोड़ देते थे। ये वो मुशरिक थे जिन्होंने राह हक को रोकना चाहा, जिन्होंने दीन हक में ऐब निकाले, जिन्होंने रसूलुल्लाह को घर से निकालने के मनसूबे बांधे और जिन्होंने जंगो जदल में पहल की। दूसरा ऐलान ये किया गया कि आइंदा हरम पाक और मस्जिद की तवल्लियत किसी मुशरिक को ना सौंपी जाए। तीसरा ऐलान ये था कि आइंदा को मुशरिक हदूद हरम में दाखिल ना हो। इसी जिमन में हज़रत अली को ये वजाहत भी पहुँचा दी, अब से कोई शख्स साबिक मुशरिकाना तरीके पर उरियाँ यानी नेकेट होकर तवाफ़े काबा नहीं कर सकेगा। चौथा ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से 4 महीनों की हुरमत के साबित होने का किया गया और इन महीनों में मनमानी तब्दीलियां करने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। याद है इसको क्या कहते हैं? नसी। सिलसिला कलाम में ये हकीकत पूरी तरह खोल कर सुना दी गई कि अल्लाह ने अपने रसूल को इसलिए बरपा किया कि वह इस दीन हक के निज़ाम को ज़िंदगी के तमाम गोशों पर पूरी तरह गालिब कर दे, और ये काम इसे मुशरिकीन की नागवारी के अलरगम सर अंजाम देना है, यानी उनको अच्छा लगे ना लगे मुसलमानों को ये काम करना ही है। देखिए मुसलमान किसी से डरता नहीं है, जहाँ आप डरे वहाँ आप दबक जाएंगे। हमेशा हक का साथ दीजिए और बेखौफ दीजिए। बास लोग हजरत अली की इस मामूरियत से अजीब अजीब नुक्ते पैदा करते हैं, हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि नबी सल्लम ने जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक को दायरा इमारत में अपना नायब बनाया था, वहाँ अली को ज़ाती नुमाइंदा, शख्सी सेक्रेटरी या बतौर सफ़ीर खसूसी एक अहम दीनी और सियासी ऐलान के लिए मामूर किया था। जिन लोगों की नज़र हुकूमत के मामलात पर है, वो जानते हैं कि बाज़ सूरतों में यही तरीका इख्तियार करना पड़ता है। हुकूमतों के वायसराय या गवर्नर मौजूद होते हैं, मगर किसी खसूसी ज़रूरत के लिए अलग से सफ़ीर रवाना करने पड़ते हैं। अब हम इस अज़ीम शान इज्तिमाए हज का तذکرہ करते हैं, जिसमें मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई। ये कब हुआ था? उससे अगले साल। हैरत है ना कि खुद नहीं गए पहले से, हम होते उछलते कूदते, अच्छा इतने साल बाद इजाज़त मिली, ये है वो है, नहीं तरीके से काम करते थे आप। क्या हुआ? आपने शिरकत की और इसमें तहरीक इस्लामी की इंसानी कुव्वत का एक समंदर नबी सल्लम की निगाहों के सामने मौजज़न हुआ। 10 हिजरी में जब नबी सल्लम ने हज का इरादा बांधा तो तमाम इलाकों में इसकी इत्तला भेज दी गई। इस्लामी इनकलाब के अलमबरदारों के काफ़िले हर तरफ से मदीना में इकट्ठे होने लगे। बंदगाने इलाही का ये काफिला चला तो रास्ते में भी मुख्तलिफ कबाइल की जमातें आकर इस दरियाए फरमा में शामिल होती गईं। अज़वाजे मुतहरा सब की सब नबी सल्लम के साथ थी। आपने ज़ुल्खुलैफ़ा से अहराम बांधा, फिर यहीं से पुकार बुलंद की जो बारगाह इलाही में हाजिरी देने वाले हुज्जाज की रूहों की सदा होती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर हैं अल्लाह, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। हम तेरे लिए है, नेमत तेरे कब्ज़े में है, बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। फिर रास्ते भर जब भी किसी टीले से चढ़ने उतरने का मौका आया तो बार बार नबी सल्लम की माईयत में इन मुखलिस मुवाहिदीन का कारवाने सदा बुलंद करता रहा, हम हाजिर हैं ए अल्लाह तू ही बड़ा है। मक्का के करीब जाकर जी तुआ में कुछ देर क्याम फरमाया, फिर इस कसीरो तादाद मुस्लिम जमात को साथ लिए हुए मक्का की बलाई जानिब से दाखिल हुए। तवाफ़ किया, सफा और मरवा तशरीफ़ ले गए, वहाँ से काबा की तरफ रुख करके अल्लाह की तौहीद की पुकार फिर बुलंद की। नवी ज़िलहज को वादी निमरा में उतरे, दिन ढलने के बाद अराफात तशरीफ़ ले गए। पहाड़ी पर चढ़कर कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा नशर फरमाया। चारों तरफ मुकब्बर खड़े थे, कौन, जो एक एक जुमला दोहराते जाते थे, और इस तदबीर से नबी सल्लम के इरशादात सारे मजमे के कानों तक पहुँच रहे थे। यानी इतना लाखों का मजमा और नबी सल्लम बगैर माइक के बात करें तो मुकब्बिर क्या थोड़ी थोड़ी दूर खड़े हो जाते, आपकी बात आगे से आगे करते हैं। सब्र कितना था लोगों में तब। अब तो 1 सेकंड आवाज़ ना आए तो लोग कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही। गौर कीजिए क्या समा होगा, नबी सल्लम का दिल इस मंजर को देखकर क्या कैफियत महसूस करता होगा। आज गोया सारी उम्र की काश्तकारी के नतीजे में एक फसल पूरे जौबन के साथ लहलहा रही थी। 1,44,000 या बाज़ रिवायत के मुताबिक 1,24,000 का एक हम आहंग मजमा ज़मीन पर अपनी मिसाल आप था। जमात के लोगों की आंखें जब इस महबूब हस्ती को पहाड़ी की बुलंदियों पर इतने मजमा कसीर के दरमियान देखती होंगी तो इनके दिलों की परवाज़ कहाँ तक ना हो रही होगी। अल्लाह अकबर, सोचिए ज़रा क्या समा होगा। आज भी जब भी जाता है इंसान तो वहाँ ये मंजर देखकर इन हालात में ज़रूर गौर व फिक्र करता है, सोच में पड़ जाता है इंसान, मैं यहाँ हूँ, और एक अजीब सी कैफियत होने लगती है। तो क्या पता चला इससे कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में आखिरी दौर में ये सब बातें हो गईं, जिससे आपका दिल भी ठंडा हुआ। आपको पता चल गया कि ये लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसके मुकाबले में मुझे काफ़ी है, और अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। फिर इस खुतबे में क्या हुआ, इस्लामी तहरीक का बैनुल इंसानी मंशूर। नबी सल्लम ने दो खुतबे इस मौके पर दिए, पहला अरफात की पहाड़ी से 9 ज़िलहज को और दूसरा 10 ज़िलहज को मीना में, मीना को दूसरी तरह लिख ले। इन खुतबों के बाद मजामीन रिवायात में बाहम दगर मिलजुल गए हैं। ये खुतबात कई हैसियत से गैर मामूली अहमियत रखते हैं। अवलन नबी सल्लम ने जमात के सबसे बड़े दीनी इज्तिमा में खिताब फरमाया और ऐसे दौर में फरमाया कि आपका पेश करदा कलमाए हक तनावर दरख्त बनकर बरगो बार लाने लगा। शदीद मुखालफतों से गुजर कर इतनी अजीम शान कामयाबी, बजाय खुद सीरत व किरदार का एक इम्तहान होती है। ऐसे ही है ना, आप देखिए ना कि जितना कोई आपको बुरा के गलत सलत कहता रहे, उतना इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है ना। ऐसे लगता है कि इंसान अपने आप को परेशान कर लेगा, और फील भी यही होने लग जाता है कि हम इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह ले आए तो फिर बहुत सारी बातें दूसरी तरह की भी होती हैं। तो बहरहाल सारी बातों का खुलासा ये है कि मुसलमानों के लिए ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। इतनी मुखालफतों से गुजरने के बाद एक इतना अजीम शान गिरोह, इस्लाम अपनी धाक और फतह के साथ लोगों के दिलों के ऊपर अपनी जगह बनाई जाए, कितनी बड़ी बात है ये। और इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारे आपके साथ जब ऐसा होता है तो बाज़ दफ़ा लोग बहकने लगते हैं। नहीं, अगर इस मौके पर कोई दुनिया परस्त शख्सियत होती और महज एक सियासी बाजी खेलने वाली को फातह फौज होती तो ऐशो इशरत के इसबाब जमा करके इनसे हसूल लज्जत के अलावा आज इसके सर में गरूर की ऐसी हवा भर जाती कि वो अपनी खुदाई जमाने और अपनी बड़ाई का कलमा बुलंद करने पर इतर आता। नफ्स सलम की बजाय कोई दूसरा नफसानियत ज़दा शख्स, नफसानियत कौन होता है, नफ्स की पूजा करने वाला, नफ्स को देखने वाला, ठीक है, तो मजहबियत का सारा झूठा मुलम्मा उतर जाता है। यानी अगर आपका दावा नबूवत झूठा होता ना तो इस शान शौकत को देखकर बंदा फिर अपनी असल में नहीं रहता और कामयाबी की इस मंजिल में इसकी रूह पिन्हा बेनकाब हो जाती। मगर यहाँ पहले से बढ़कर एजिज था, आजिज थे आप, पहले से ज्यादा अल्लाह के लिए हम्द और शुक्र के तराने थे। फिर चूंकि नबी सल्लम की फरासत नबूवत समझ रही थी कि जमात से खिताब का ये आखिरी मौका है, इसलिए गोया के अलविदाई वसीयतें फरमाई। आप कहते हैं ना कि इसके बाद सिर्फ चंद महीने आप जिंदा रहे, वो वसीयतें जिनका हर हर लफ्ज पेश कीमत है। तीसरी बात कही कि मुल्की काम के इस तकमीली मरहले पर आ जाने के बाद यही मौका था कि तहरीक इस्लामी की तरफ से इंसानियत के नाम कोई पैगाम और कोई मंशूर दिया जाता। बस आपने इस फरीजे को बाखसन वजूह अदा किया। चौथी बात यह कि ये खुतबे नबी सल्लम के कमाले खिताबत और आपकी शान फसाहत के भी नादर नमूने हैं और इनके ज़रिए इस मुकद्दस शख्सियत की अजमतों को समझने में मदद मिलती है। ये पेश नज़र रहे कि इन खुतबों का एक बड़ा हिस्सा मखसूस मुल्की हालातों मसाइल से मुतल्लिक है और एक हिस्सा बैनुल अक्वामी मंशूर पर मुश्तमिल है। नफ्स मज़मून ख़ुद ही इसकी तकसीम को वाज़ह कर देगा। यानी आपने इसमें उस दौर के जो सियासी हालात थे उसकी भी चंद बातें की और जो इसके अंदर एक आखरत की बेहतरी का पैगाम था वो भी दिया था। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि हमें नबी सल्लम की इन इंस्ट्रक्शंस और इन हिदायात से फ़ायदा लेने वाला बना दें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक एक बात पे खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।